अगली चंद आयतों को इकट्ठा पहले लूंगी ताकि हम देख सकें कि एक किरदार के बदले में एक दूसरा किरदार कब बनता है। खुलासा उसका अभी से बता देती हूँ। बेकार इंसान, बेमकसद काम, बामकसद लोग बिलाखिर मुफसिद बनते हुए मुफलहून के दर्जे पे पहुँचते हैं। इसके बरक्स वमिनन नासी में यश्तरी लहवल हदीस, और कई ऐसे भी लोग हैं जो कारोबार करते हैं मकसद हयात से गाफिल कर देने वाली बातों का, बेकार चीज़ों के खरीदार होते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? लियुदिल अन सबीलिल्लाहि बगैर इल्मिन, ताके भटकाते रहें राहे खुदा से इसके नताइजे बद से बेखबर होकर। वयत्तखिज़हा खुजुवा, और इसका मजाक उड़ाते रहें। क्या इंजाम है ऐसे लोगों का? उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। क्या कैफियत है ऐसे लोगों की? दो तरह के हैं ये लोग, एक वो हैं जो इस काम की रस्म डालते हैं और दूसरे वो हैं जो अंधे बहरे होके उन्हीं रास्तों पे चल पड़ते हैं। कैफियत क्या है? वह इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, और जब पढ़कर सुनाई जाती हैं उसे हमारी आयतें। वल्ला मुस्तकबिरा, मुंह फेर लेता है तकब्बुर करते हुए। गोया के कालम यस्महा, गोया के उसने इसको सुना ही ना था, यानी सुनी अनसुनी कर देता है। ज़मीर मुर्दा हो चुके, शराफत और नेकी का जज्बा दम छोड़ चुका। कोई नसीहत कर भी दे कि अपनी फ़िक्र करो, अपनी आने वाली नस्लों पे रहम करो, अपनी कौमों पे रहम करो, माशरों के सुकून और गारत को तबाह ना करो, दौलत की मोहब्बत में इतने अंधे ना बनो कि तुम्हें अपने अंजाम का होश भी ना रहे, इस पे कोई असर नहीं होता, बल्कि उल्टा गुस्से और गरूर से मुंह फेरते हुए उठ जाता है, अकड़ता है, और यूं लगता है गोया कि उसने सुना ही नहीं। कान नफी उजुनई ही वक्रा, जैसे कि इसके दोनों कानों में बोझ है, यानी बहरा है। वक्र कहते हैं कानों की गरानी, जिसके बायस बात सुनाई नहीं दी जाती। कभी कानों में वैक्स जम जाए ना तो सुनने में खलल आए तो इस लफ्ज़ को महसूस कीजिएगा। इतना इनको दूसरी बातें सुनने का शौक लग जाता है कि फिर अल्लाह की बात सुनी नहीं जाती, बोझल लगती है, थक जाते हैं। 3 घंटे की फिल्म लंबी नहीं लगती, अगर इंटरवल भी ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अल्लाह का कलाम 15-20 मिनट से ज़ायद भी सुनना मुहाल लगता है। फबशिर हु बी अज़ाबिन अलीम, बस खुशखबरियाँ सुना दो इसको दर्दनाक अज़ाब की। इसको तो अज़ाब की सुनाओ, लेकिन जिनका तذکرہ शुरू में गुज़रा मोहसिनीन, उनका क्या हाल है? इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, ये नहीं कि कभी कभी कर लिए, जोलानी आई जोश आया तो कर लिया, होश आया तो सो गए, नहीं, आमिलू करते ही रहे। लहुम जन्नतुन नईम, इनके लिए खुशियों वाले बागात हैं। ये नहीं फरमाया कि इनके लिए जो बाग हैं उनमें नेमतें होंगी, बल्कि जन्नतुन नईम कहा, यानी जन्नत की नेमतें हैं, ये नहीं फरमाया, बल्कि कहा इनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं। क्यों? कि अगर पहला अंदाज इख्तियार किया जाता तो मतलब क्या होता कि इन नेमतों से लुत्फ़ानंदोज़ तो हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जन्नतें इनकी अपनी हों, वो नेमतें इनकी अपनी हों। इस तरह अंदाज़ फरमाया कि ये नेमतों वाली जन्नतें अब इनकी हो गई, ये ओन करते हैं इन नेमतों को, जैसे एक मालिक फ़ायदा उठाता है अपनी चीज़ों से, इसी तरह से ये भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। कितनी देर के लिए जन्नत मिली है? खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहने वाले उसमें। वाकई यकीन नहीं आता कानों पे, तो का वाद अल्लाह ही हक्का, अल्लाह का वादा सच्चा। पीछे हम पढ़ चुके, अल्लाह से सच्चा है ही कोई नहीं वादों में। का अच्छा, अल्लाह का वादा तो है, लेकिन ये होगा कैसे? बहुत गुनाह थे, बड़ी गलतियाँ थीं, बहुत कुछ था, बड़ी खामियाँ रह गईं। तो का कोई बात नहीं, बहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो ग़ालिब और दाना है। पिछली कई सूरतों में आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला की ये सिफत आ रही है, वो गालिब भी है और वो हकीम भी है, उसको पता है काम कैसे करने हैं और कैसे करानी है। वो लोग जो गलत काम करने की बजाय अच्छे काम करते रहे, अल्लाह उनको अपनी जन्नतों में पहुंचा देगा जिनके काम अच्छे थे, जो बिगाड़ में नहीं संवारने में इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने अल्लाह की दीवी नेमतों को मिसयूज़ नहीं बल्कि उनका अच्छा इस्तेमाल किया। इसीलिए फिर आगे अल्लाह ताला की कुछ नेमतों की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, लेकिन हम पहले देखेंगे इस दूसरे किरदार को जिसका तذکرہ हुआ यहाँ, वह मिनन नास। जहाँ भी लफ्ज़ मिनन नास आता है तो मुझे न चाहते हुए भी सूरत बकरा का दूसरा रुकू याद आ जाता है, वह मिनन नास मै यकूल आमन्ना बिल्लाहि वबिल आखिरति वहुम ला युमिनून। मुनाफिकों की बात। मिन कुछ लोग ऐसे हैं, सारे नहीं, ये भी अल्लाह ताला का एहसान है। हालांकि अगर आज हम अपने इर्द गिर्द देखें तो अक्सरियत ऐसी है, लेकिन अरबी जुबान में मिन तबईज़ के लिए होता है, बाज, सम ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, फ्यू ऑफ देम। कौन है? मई यश्तरी, जो खरीदते हैं। यश्तरी का लफ्ज़ इश्तरा से है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, पहली दफ़ा सूरह बकरा में पढ़ा था कि अल्लज़ी नश्तरउद्दलालत बिलहुदा फ़मा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। तो इस तरह का लुगवी माना यानी डिक्शनरी मीनिंग, लिंग्विस्टिक मीनिंग क्या होता है? खरीदना। लेकिन बाज़ औक़ात एक काम के बदले दूसरे काम को इख्तियार करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सचेंज के मानों में, लेना कुछ था ले कुछ और लिया। इसी तरह इस तरह का लफ्ज़ तरजीह देने के मानों में आता है। तरजीह किसको देते हैं? प्रायोरिटाइज करना। पहला मानी लें तो कहेंगे दे आर बाइंग, ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं। दूसरा मानी लेंगे तबादले वाला तो मतलब दे आर एक्सचेंजिंग, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें घर से अब निकाल के बुरी बुरी चीज़ें ला रहे हैं, लहवल हदीस की। और तीसरा मानी ले लें तो सारे ही बातें वाजे हो जाती हैं कि इन्होंने तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे ये चीज़ें डाल दी कि जो लोगों को भी और इनको भी गाफिल कर दें। पैसे देकर ख़रीदते हैं, वक्त देकर ख़रीदते हैं, स्किल्स देकर ख़रीदते हैं, जवानियाँ देकर ख़रीदते हैं, आधी आधी रातें काम कर कर के ख़रीदते हैं। यानी इन लोगों की ज़िंदगी का मकसद क्या है? इस किस्म की चीज़ें ख़रीदना, बेचना, सजाना, संवारना, जो हैं लहवल हदीस। लहव कहते हैं बेकार को, चिड़ियों की चूँ चूँ लगव होती है, हर वो चीज़ जो बंदे को मकसद हयात से गाफिल कर दे, अपने अंदर इतना मशगूल कर ले कि इंसान गाफिल हो जाए। अब अपने लफ्ज़ में तो कोई भी ऐसी चीज़ होगी ना, लेकिन इसका इतलाक बुरी और फजूल बातों, बेहुदा गोई, गपशप, खुराफात, हंसी मजाक, किस्से, कहानियाँ, ड्रामे, अफसाने, नावल, गाना बजाना, ये सब के ऊपर इसका इतलाक आता है लहव अल हदीस। अल हदीस तो बात है ना, कुरान क्या है? फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून। तो इस बात के मुकाबले में ऐसी चीज़ें खरीद लाते हैं, बेच लेते हैं जो लहव अल हदीस होती हैं। अब ये कैसी हैं, कौन सी हैं, इसको किस तरह से समझा गया, हम थोड़ा सा देखेंगे कि मोहसिनीन के बिलमुकाबिल कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी को कीमती नहीं समझते। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हम सबको गिनती के चंद साल दिए हैं, और ये आप सबका भी मुशाहिदा है। आपके पर्स में खुले पैसे होंगे ना तो आप खुले दिल से खर्च करते हैं, पता ही नहीं आ रहे हैं जा रहे हैं और भी आ जाते हैं डालते रहते हैं, आप खुले दिल खर्चते हैं। जिसके पर्स में गिने हुए पैसे होंगे ना तो फिर एक एक नोट निकालते हुए कहेगा इतने कम हो गए, इतने कम हो गए। बिल्कुल इसी तरह जो ज़िंदगी को खुला समझेगा ना वो इसको बेकार खर्च करेगा। इस्लाम ने हमें जो ज़िंदगी का मकसद बताया ना वो क्या है? नंबर एक, ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, लिखें इसको, इंतहाई कीमती चीज़ है ज़िंदगी। इसका एक एक लम्हा इतना कीमती है कि आप हज़ारों देकर भी वापस नहीं ले सकते। मिसाल, मरने वाले को मरने से रोक लें, आप लाखों करोड़ों ऑफर करें डॉक्टर्स को कि सिर्फ 5 मिनट की ज़िंदगी दे दें इसको, शायद कोई बंदा किसी ऐसे वक्त में मरे कि 5 मिनट में वो कोई खुशी देख लेता, एन उस वक्त पे उसको रोक लिया। मलकुल मौत के नाते से एक बात याद आ गई कि जब किसी ने पूछा कि कभी तुम्हें किसी की जान लेते हुए अफसोस हुआ? पीछे सुनाई थी बात आपको ये गालिबन। कहा हाँ, एक बच्चे पे आया था अफसोस जब उसकी माँ डूब रही थी और उसकी माँ उसको ऊपर कर रही थी, और एक मौके पे उसको रहम आया था तो शद्दाद पे आया था कि जिसने पूरी जन्नत बनाई, कई साल से सोने चांदी की दीवारें कर करा के दुनिया में जन्नत बनाना चाहा, और जब तैयार हो गई लोगों ने कहा ये अब देखिए कैसी बनी है, तो घोड़े पे बैठा भी एक कदम अंदर नहीं गया कि मलकुल मौत को कहा कि इसकी जान ले लो। कि मलकुल मौत कहते हैं कि मुझे उस वक्त रहम आया, अगर उस वक्त उसको कोई 5 मिनट भी देता, चलो खुशी देख के ही मरता। इतनी कीमती है ये जिंदगी, ऐसी मोहलत जो सिर्फ एक बार मिलेगी। पहली बात है जिंदगी कीमती है, दूसरी बात वंस अलाइव। हमारे यहाँ कहते कोई बात नहीं, शादी ऐश कर लो, कुछ भी कर लो, वंस अ टाइम, एक ही दफा शादी होती है, शादी को रोज रोज थोड़ी होनी है। बच्चा पैदा हो गया खुशी कर लो, बच्चा कौन सा रोज रोज होता है। घर बनाया है मस्ती कर लो, एक ही दफा की मस्ती है। आज ग्रेजुएट हो गए हो कॉलेज से, कर लो प्रॉम मना लो, कोई बात नहीं, कौन सी रोज रोज की कहानी है। जिंदगी कीमती भी है, जिंदगी एक ही बार आती है, और जिंदगी के जो दिन हैं वो गिने हुए मुकर्रर वक्त हैं। जिस दिन इंसान अपना वक्त पूरा कर लेता है, दुनिया भर के खजाने देकर एक घड़ी का इजाफा नहीं कर सकता। अगली बात याद रखने के काबिल जो है वो ये कि अच्छा या बुरा जो अमल इंसान करता है, उसके अच्छे या बुरे नताइज उसकी जिंदगी पर जरूर मुरतब होते हैं, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। फिर अगली बात याद रखिए, पॉइंट्स में लिखिए कि इस जिंदगी के हर अमल और हर फेल के लिए अपने खालिक और मालिक के सामने जवाबदेही है। उसने आने पाही का हिसाब लेना है। लाओ बताओ, 16 साल के हुए थे तो क्या किया था, फर्स्ट टीन कैसे मनाया था, बताओ। अगली बात लिखें कि इस जिंदगी को अल्लाह ने हमें जो दिया है ना, आखिरत को संवारने के लिए दिया। जैसे कोई कंपनी को गाड़ी देती है वर्कर को कि इस पे बैठ के तुम काम पे आ जाया करो, बस ये जिंदगी ना फूल झड़ों के लिए आई, ना गुल छड़े उड़ाने के लिए आई, ना मस्ती के लिए आई, ना ऐश, ना फन प्लेक्स। ये दुनिया फन प्लेक्स नहीं, ये मौज मस्ती नहीं। अल्लाह ने हमें एक मकसद के लिए दिया कि यहाँ रह कर काम करो। फिर अगली बात है कि अल्लाह ताला ने हमें वो सारे असबाब दिए जिनको इस्तेमाल करके इस जिंदगी का हम एक खूबसूरत इस्तेमाल करें और कल अल्लाह की बनाई हुई जन्नतों में आबाद हो जाएं, जो असल में फन प्लेक्स है, जो डिज्नीलैंड है, जहाँ जाने के बाद बंदे का दिल नहीं भरेगा। वहाँ हर वो चीज़ है जो बंदा सोचे या ना सोचे। फला तालम नफ्सुम्मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन। ये जिंदगी मुशक्कत के लिए मिली। या अय्युहल इंसान इन्नका कादहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, सूरह इंशिकाक की आयत है। ए इंसान, तो अपने रब की तरफ मेहनत करने वाले कुशां 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 कुशां, और एक दिन तुम उससे मुलाकात कर लोगे। अब आप बताइए, जब इतनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये कुछ साल मुझे और आपको मिले, इसके अंदर इस्तेमाल के लिए अल्लाह ने ये दो बटन लगा दिए, आंखों के, कान लगा दिए, जुबान लगा दी, सांस लेना, पेट लगा दिया, जुबान को चस्का लगा दिया। अब कोई बंदा ये सारे मकासद हयात पीछे करके बेमकसद ज़िंदगी गुजारे, लख और लहव में गुजारे, खेल में लगाए, इधर लगाए उधर लगाए, तो क्या उसने अल्लाह के डिवाइन प्लान को समझा, उस मकसद को समझा जिसके लिए अल्लाह ताला ने दिया? इसीलिए कुरान और हदीस में हर उस चीज़ से मना कर दिया गया जो बंदे को इस मेन मकसद से दूर कर दे। समझ के जाएं ये बात। आज हम इस दुनिया में कोई खुशगपियां करने नहीं आए, काम करने सुबह निकलते हैं घर से, लोग ऑफिस में आते हैं वो काम के लिए आते हैं। हाँ, बीच में उनको दिए जाते हैं छोटे छोटे इंटरवल्स, टी ब्रेक दे दी, लंच ब्रेक दे दी, आप उनको एक लॉन्ग ब्रेक दे दें, लेकिन एंड ऑफ द डे कंपनी वाले पूछते हैं करके क्या गए हो भाई, पर्ची दो दिखाओ, थिंग्स टू डू पूरी हुई कि नहीं हुई। अल्लाह ताला ने भी हमें यही दिया, 5 इंटरवल दिए दिन में नमाजों के, छोड़ो सारे काम, आओ मेरे सामने, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा स्ट्रेच ब्रेक कर लो, आओ थोड़ी देर रहो, सारा वक्त तुम्हें ये खाने पे लगाए रखते हैं, चलो 1 महीना रोजे रखवाओ ताकि तुम्हारे घर के खाने पकाने को थोड़ा सा कम करें। फितरी इंटरवल्स दिए, और सबसे बड़ा इंटरवल तो नींद का, 24 घंटे में से 8 घंटे भी अगर कोई सो ले तो 1/3 तो पूरे का पूरा हमारा ब्रेक का टाइम होता है। क्या अल्लाह ताला ये ना कर सकता था कि हमें 24 घंटे काम देता? उठ उठ के रातों को नमाजें पढ़नी पड़ती। आप कभी सोचें कि फजर और ईशा के इन बिटवीन का लंबा टाइम भला क्यों है? अगर अल्लाह ताला रहीम ना होते, अल्लाह ताला हमारे साथ इंसाफ ना करते, कहते हर 15 मिनट बाद उठ के नमाज पढ़ो, हम कहते अल्लाह क्या करूं कैसे करूं मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करो, आई डोंट केयर। कभी आपको ऐसा मिजाज मिला? फजर से जोहर का टाइम एक खास हिकमत है, उठो वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जाओ काम काज करके आओ, सो के उठे हो फ्रेश माइंडेड हो, जाओ तिजारत करो, काम करो, जो अल्लाह ने जिम्मेदारियां दी हैं करो, औरतों से कहा भाग भाग के सफाइयां करो, घर साफ करो, खाने पकाओ, कपड़े धो लो, इस्त्री कर लो, जोहर के साथ ही फिर वक्फे काम करने शुरू कर दिए, सारा दिन थोड़े थोड़े वक्फे, फिर ईशा के बाद फिर कहा 7-8 घंटे सो जाओ। क्या नहीं लगता एक प्लान है? अब जो लोग ईशा के बाद जागते हैं लाहवल हदीस के लिए, क्या वो अल्लाह के नेविगेशन सिस्टम में हलल नहीं डाल रहे? और जो दिन का आधा हिस्सा सो सो के गुजार देते हैं, क्या उन्होंने अल्लाह के उस वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह के हिस्से में इंटरप्शन नहीं डाला? देखिए कोई मशीन हो, उसका कोई एक पुर्जा आपको कह दे मेरी मर्जी काम जब मर्जी करूं, वैक्यूम क्लीनर से लेके कंप्यूटर तक को खोल के देख ले, हम सब इसके गवाह हैं। सिर्फ एक तार उतर जाए, सिर्फ एक फ्यूज उतर जाए, सिर्फ एक बटन इधर से उधर कर दें, पूरी मशीन ठप से पड़ी रहती। आप चलाएं उसको, रगड़ें उसको, कारपेट पे मारें, नहीं चलेगी। ये इंसानों का हाल है। हम जब मस्तियां करते हैं ना, मौजे मारते हैं, हम क्यों नहीं सेट कर पाते उस निज़ाम को जो हमें इस क्लासरूम के एंड पे मिलता है? अल्लाह से डिवाइन हमें इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, और हमारे दिल एक कंटेनर की तरह इसको लेके जज्बात से मغلوب होके यहाँ से उठते हैं। क्यों घर जाते ही हमारी सारी उम्मीदों पे उस पड़ जाती है? क्योंकि हर बंदा अपने तरीके से हमें चलाना चाहता है। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। लिहाजा अब देखिए, व मिनन नासी मई यश्तरी, ये जो मई है ना मन, ये अल्लाह के मुकाबले का ताबूत है। अल्लाह ने कहा मकसद से जियो, ये वो शख्स है जो आपको मकसद से हटाना चाहता है। और इसे आयत की खास शान नज़ुल भी है, वो भी सुन लीजिए तो आपको फिर आज के नज़र बिन हारिस ढूंढने भी आसान लगेंगे। अल्लाह के नबी सल्लम ने जब दावत देनी शुरू की, दिन ब दिन अल्लाह के नबी की दावत आम होती गई। याद रखिए सच में बड़ी कशिश है कड़वा, अलहक्कु मुर्रा, फिर भी खाते हैं लोग, कड़वे करेले भी शौक से खाते हैं क्योंकि उनमें फायदा होता है। हक में इतनी कशिश है, जो उसके ऊपर पर्दा डालेगा ना, बिल्कुल शम्मा पे डाले हुए कपड़े की तरह उसका अपना कपड़ा जल जाएगा। जिसने हक के रास्ते में रुकावट बनना चाहा, अल्लाह ने उसको जला के राख कर दिया। जब मक्का वालों ने ये देखा कि भाई ये क्या हुआ, ये तो हर दिन चल पड़ी बातें, लिहाजा उनको लगा कि अगर इस्लाम फैल गया हमारा क्या बनेगा, हमने तो सरदारियां बना रखी, हमने तो लोगों के अंदर एक अपनी धाक तैयार कर रखी है। चुनाचे नजर बिन हारिस एक शख्स ताजिर था और अदीब भी था, यानी राइटर था, पढ़ने लिखने से इसका ताल्लुक था, कारोबार के सिलसिले में काफी इधर उधर जाके घूमता फिरता था। ये कारोबार के सिलसिले में ईरान और इराक और शाम गया, वहां से इसने रुस्तम और इस्फंदियार के किस्से लिए, बादशाहों की कहानियां और अफसाने लिए। आपको पता है कि ईरानी और इराकी कल्चर में फिक्शन की कितनी कसरत है। पूरी प्लानिंग के साथ ये वहां से नंबर एक कुछ ऐसी किस्से कहानियां लेके आए, दूसरी चीजें लौंडियां खरीद के लाया जो गाने गातियां थी, ऐसी लौंडियों के खास उस दौर में एक नाम भी होते थे, लाता। और देखता कि जो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से मुतासिर हो रहा है तो उसके ऊपर अपनी एक लौंडी को मुसल्लत करता। और उसको हुक्म देता कि इसको खूब खिला, इसको खूब पिला, शराबें पिला और इसको गाने सुना ताकि ये इस किताब से दूर हो जाए। और रिवायात में आता है कि इसकी ये साजिशें काफ़ी हद तक मुतासिर हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वालों में कमी होने लगी। क्यों? नफ्स तो चाहता क्या है? आज़ादी। वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। ये वो शख्स था जिसने मक्का के कल्चर में रस्म डाली थी इस्लाम के रास्ते पे लोगों को ऐसी चीज़ों में मशगूल करने की कि जिसकी वजह से लोग सच्चे दीन से दूर हो जाए। और हर दौर में यही हुआ, हर नबी के सामने वही लोग मुजरिम बनकर पेश हुए और उन्होंने ऐसी ही चीज़ों को पेश किया, कहीं रक्स, कहीं महफिल, कहीं गाने, कहीं बजाने, कि जिससे लोग ज़िंदगी के संजीदा मसाइल से बिल्कुल दूर हुए। आज देखिए कि एक चीज़ को ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना के पेश कर दिया गया, और वो क्या है? तफरीह, एंटरटेनमेंट। कहते हैं कोई फ़न नहीं इस्लाम में, कोई कुछ नहीं, करेंगे इसमें हम बात, लेकिन समझ लीजिए कि ये आयत उतरी है अल्लाह के नबी के पैगाम से लोगों को हटाने के ज़िमन में। इस शख्स ने किस तरीके से इन चीज़ों को आम किया कि जिससे लोग इन चीज़ों में इतने खोए कि इसने कससुल कुरान के मुकाबले में कससुल ईरान पेश करने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस शख्स से बड़ा भी कोई मुजरिम होगा कि इसने लोगों की तवज्जो को जाहिर कर दिया, इसने लोगों की तवज्जो को खींच लिया, अपनी तरफ ले गया। लिहाजा हम देखेंगे कि लाहवल हदीस में इस वाक्य की बुनियाद पे और कौन सी चीज़ें मिलती हैं और हम इसको कहाँ पर लेके जा सकते हैं। हसन बसरी से जब पूछा गया कि लाहुल हदीस क्या है, तो उन्होंने अपनी किताब में जो इसकी तफसीर की है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। कहते हैं कि हर वो बात लाहुल हदीस है, मा शगलक अन इबादतिल्लाहि व ज़िक्रिही, जो तुझे अल्लाह की इबादत और उसके ज़िक्र से गाफिल कर दे। मसलन असमर, रात गए तक किस्सा गोइयाँ, हंसने हंसाने वाले चुटकुले, हर तरह के खुराफात, गाना बजाना वगैरह इसमें शामिल है। अब देखिए कि इसके अंदर जो लफ्ज़ आए हैं मुफस्सरीन में से, ओल्ड मुफस्सरीन जिनको हम ज़ाहिर है कि अल्लाह के नबी सल्लम के दौर से लेके चलते हैं, उनका लहवल हदीस के बारे में क्या नज़रिया है, थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगी। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये बातें बताने वाले के अपने ख्याल आते हैं, शायद उसको ये पसंद नहीं, तो अल्लाह ना करे कि हम कुरान पढ़ते पढ़ाते हुए अपने ख्यालात किसी के ऊपर लेकर आए। तो अब्दुल्ला बिन मसूद नबी सल्लम के प्यारे सहाबी, उनसे पूछा गया कि लाहुल हदीस से क्या मुराद है। उन्होंने 3 मरतबा जोर देकर फरमाया, हुवा वल्लाही अलगीना, ये अल्लाह की कसम गाना है, गाना है। यानी लाहुल हदीस से मुराद गाना है। इब्ने जरीर, इब्ने अबी शैबी और हाकिम और बहकी में ये रिवायत है। यही कौल अब्दुल्ला बिन अब्बास, जाबिर बिन अब्दुल्ला, मुजाहिद, इकरमा, सईद बिन जुबैर, हसन बसरी और मखहूल का भी है। कुछ रिवायात इसकी तस्दीक भी करती हैं, काफ़ी रिवायतें हैं, लेकिन आप सिर्फ तिरमिजी लिख लें आपके लिए काफ़ी होगा। अबू मामा बाहली की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गाने बजाने वाली औरतों का बेचना और ख़रीदना और उनकी तिजारत करना हलाल नहीं, ना ही इनकी कीमत लेना हलाल है। और एक दूसरी रिवायत में आखिरी अल्फाज ये हैं कि इनकी कीमत खाना हराम है। एक और रिवायत में आता है, लौंडियों को गाने बजाने की तालीम देना और इनकी खरीदो फरोख्त करना हलाल नहीं है और इनकी कीमत हराम है। इन तीनों हदीसों में ये बात भी है कि आयत मैं यश्तरी लहवल हदीस इन्हीं के बारे में नाजिल हुई। इसी तरह इमाम मालिक के हवाले से हज़रत अनस की एक रिवायत है, नबी सल्लम ने फरमाया, मन जलसा, जो शख्स गाने वाली लौंडी की मजलिस में बैठकर इसका गाना सुनेगा, क़यामत के रोज़ इसके कान में पिघला हुआ सीसा डाला जाएगा। और जानते हैं सीसा क्या होता है? शीशा ना समझे इसको, सीसा वो धात है जो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पिघलती है, जैसे पीतल और सोना और चांदी, इसी से इमेजिन कर लीजिए। उसका गाना सुनेगा, उसके कान में पिघला हुआ शीशा डालेगा। अब ये बताइए कि यहाँ बार बार आ रहा है गाने वाली औरतें लौंडियाँ, तो जहन में ये बात रखिएगा कि जिस दौर में यायते उतर रही थी उस दौर में गाने बजाने का काम मुकम्मल जो था वो लौंडियाँ करती थी, आज़ाद औरतें नहीं। उस वक्त तक कभी आर्टिस्ट का नाम आम नहीं हुआ था, सिंगर्स और फनकाराएं ये नाम नहीं थे। अल्लाह के नबी ने जब उनका बेचना, उनका गाना, उनका सब कुछ पसंद ना किया, तो आप ये बताइए कि आज के दौर में इसका इत्तला कहाँ होगा? क्या इस बात को सामने रखें सही हदीस को, तो क्या हर वो कारोबार जिसमें फिल्में, गाने, म्यूज़िक ये चीज़ें बिकती, किराए पे दी जाती, क्या हलाल होगा? कितने कांटे हैं इस क्लासरूम के बाहर बिखरे हुए जिस पे चलना पड़ता है लोगों को। यहाँ तो हम इतने आरामदेह माहौल में बैठते हैं, कभी ज़िंदगी यहीं गुजर जाती तो बच जाते शायद, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं हमें चारों तरफ अपनों ही के अंदर, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने खानदानों के अंदर इतनी खराबियां दिखती हैं कि बंदा परेशान होके फिरता है कि क्या करूं, किधर जाऊं, किधर ना जाऊं। तो यहाँ ख़ास तौर पे गाने बजाने का लफ्ज़ है, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन ब्रॉड कर ले तो इसमें हर वो चीज़ आती है जो बंदे को गाफिल करती है। आज के दौर में क्या क्या चीज़ें लोगों को गाफिल किए हुए हैं। मैं कहती हूँ कि एक 3 घंटे की फिल्म देखना तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप 15 मिनट सिर्फ टीवी का कोई चैनल खोल लें इसी बहाने से कि खबरें सुननी है, और वो नाचते फुदकते एड एडवर्टाइजमेंट्स उनको ज़रा देख लें तो आपके दिल के अंदर उथल पुथल शुरू हो जाएगी। एक बोल कहीं कान में घुस जाए कहीं दिन तक निकलता ही नहीं दूसरे कान से, इतना असर है। ये चीज़ें जम जाती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस तरह बारिश के पानी से सब्ज़ा उगता है इस तरह गाना निफाक पैदा करता है। ये कौन से गाने हैं, कैसे हैं, एक अलग बात है, हम सबको पता ये कौन से हैं। महबूब के किस्से, जुल्फों की बातें, क्या आज मीडिया ने हमारे दिमागों के ढक्कन खोल के उसमें गंदगी नहीं भरी? एक पिक्चर किसी मैगजीन के बाहर के मीडिया को उन्होंने एक मोटे से पहलवान से शो किया हुआ है, और नीचे जितने लोग गुजरे हैं उसके हाथ में एक देग है, और वो उसके अंदर से चमचे भर भर के जो लोग गुजरे हैं उनके सर खुले हुए हैं, ढक्कन खुले हुए, आधे आधे सर खुले हैं, और वो अपने हाथ से बड़े बड़े चमचे उनके अंदर उंडेल रहे और लोग आगे जा रहे हैं। इज इट नॉट ट्रू? आज जो मीडिया चाहता है हमारे दिमागों में नहीं डालता। बच्चे खड़े हैं तो फुदक रहे हैं, नाच रहे हैं तो गा रहे हैं, लड़कियां कंधे उचकाती हुई नाच रही हैं और गा रही हैं। क्या हमारे जहनों के अंदर गंदगी नहीं डाल दी गई? आप हर वो चीज़ ले लें, आप देखिए कि आज के दौर में तो इसके कई तरीके आपको सामने दिखेंगे। मैं कहती हूँ लोगों ने खेल के नाम पे मैच को भी आज लाहौल हदीस बना लिया। नमाजें गईं, खाने पक गए। किसी खातून की गवाही कि जब मैच होने होते हैं तो मैं उससे पहले खाने पका के फ्रीज कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैं उसके बीच में उठना पसंद नहीं करती, और बच्चे खुद ही निकाल के गरम करके खा लें। क्या ये लियुदिल्लन्नास अन सबीलिल्लाह नहीं, लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बगैर इल्म नहीं है? देखिए बग़ैर इल्म की बातें, ये पहला दर्जा होता है, अभी अगले दर्जे पे तो हम नहीं बात कर रहे। पहला दर्जा क्या होता है कि इल्म से इंसान दूर भागता है। आज कितने लोग हैं जो कुरान की दावत को नो थैंक्स कह के झुटलाते हैं, उसकी वजह क्या है? यश्तरी लहवल हदीस। मैंने कहीं रिपोर्ट शेयर की थी, इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, अमेरिका की थी वो, कि उन्होंने खुद ही, यानी ना दीन ना मज़हब ना अल्लाह का डर ना कुछ, सिर्फ सोशल इफ़ेक्ट्स को पेश किया था कि अगर एक हफ्ता हमारे बच्चे टीवी ना देखें तो उनके अंदर क्या चेंज आती है। इतने होशरुबा किस्म के उसके अंदर इंकशाफ आते हैं, और उन्होंने सिर्फ दुनिया शेयर की हुई है कि दे लिसन मोर टू देयर पेरेंट्स, ली परली दे वोका परली। आज हमारा हाल क्या है? आधी रात तक हम क्यों जागते हैं? हमारे वीकेंड नाइट्स का है, हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, हमारी बच्चियां क्या देख रही हैं, क्या सलाइयाँ उनकी आंखों में दिखाई जा रही हैं, किसको पता है? वयत तखीज़ा खुजुवा, ये तो फिर उसका अगला दर्जा है ना, फिर मजाक होता है दीन का, तुम बेवकूफ़ लोग, नो फन इन इस्लाम। उनको इस्लाम फिर बोरिंग लगता है, उनको इस्लाम ऐसा लगता है कि बस जिसको समझें कि खुद कोई भी ऐसी चीज़ उसमें कोई खुशी की नहीं है। इस पे एक पूरा लेक्चर है कि इस्लाम में तफरीह का क्या तस्वुर है, कि इस्लाम खुश नहीं होने देना चाहता, हमें रोना धोना देखना चाहता है इस्लाम, ऐसा नहीं है। हर उस चीज़ की इस्लाम में इजाज़त है जो हमारी फितरत को मैच करती है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि तीन काम हर बंदा कर सकता है। नंबर एक, आपने फरमाया तीन चीज़ों से खेलो, दुनिया का हर लफ्ज़ बातिल है मगर तीन चीज़ें। एक ये कि तुम तीर कमान से खेलो, उस दौर में लोग तीरों से खेलते थे, बच्चों का खेल था। दूसरा, अपने घोड़े को सुधाने के लिए खेलो, यानी घुड़सवारी। और तीसरा, शौहर अपनी बीवी से लुत्फ़ ले, जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है। फितरत का हर तकाजा इस्लाम ने पूरा किया है। हम घंटों गंदी चीज़ें देख देख कर अगर हम सोचें कि हम फिर ही खुश होंगे तो ये बात दुरुस्त नहीं है।